ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरकों पर एकमुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। इन उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है, जो कड़ी मेहनत करके पूरे भारत का पेट भरते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। नई दिल्ली में कल मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 42 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य की दिशा में करीब 32 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक 4 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद, मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक को 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया है और 3,000 वर्षों से अधिक के इतिहास का इसमें संकलन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग की सार्थक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक विकास पर भी चर्चा की। 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को कतर पहुंचे विदेश मंत्री की ये इस साल की पहली राजनयिक भागीदारी थी। उनकी यात्रा से दोनों पक्षों को राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के साथ आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा में मदद मिलेगी। ईरान के उप विदेश मंत्री माजी तख्त रावंची आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज और कल नई दिल्ली में होने वाले ईरान भारत राजनीतिक परामर्श के 19वें दौर में भाग लेंगे। ईरान और भारत के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर सुदृढ़ हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की जेलों में बंद कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षाकर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वो 183 भारतीय मछुआरों और कैदियों में से सजा पूरी कर चुके लोगों की रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाए। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई और ये 1,73,00,000 से अधिक हो गया। दिसंबर 2023 में सकल जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499 करोड़ रुपए रहा था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। इन माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदे जा सकते हैं। सीधे वेबसाइट amantran.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट लिए जा सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपये से 100 रुपये और बीटिंग रिट्रीट के लिए 20 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।